यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 6 से 8 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित बेड़ू गीत सप्ताह के अंतर्गत 4 मई की प्रातःकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ।
इति वेरुलवं राजान सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजश्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। श्रीगोप्या ऊचुः अक्षाणुगतां फलमिदं न परं विदामः। सख्यः पशूननु विवेशयतो वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश श्रुतयः ननु वेर्जुष्टा।
जैर्वानितीतमनुरात्तकटाक्षमोक्षाश्रूत
प्रवालबरः स्तवकोत्पलाज मालानुकृतपरिधानविचित्रवेशौ मध्ये विवेदतुलं पशुपालगोष्ठ्या रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ।
ये कहते हैं हे भाव विशेषेण प्रकाशमान। राजन का होता है जो प्रकाशित हो, जो चमके राजित हो। तो आप राजन है, आप राज रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनुसार भाव विशेष से आप प्रकाशमान हैं। जब किसी व्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होता है तो वह बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए राजन शब्द दिया जा रहा है। अथवा यह कहकर कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रीति से, ऐसा संबोधन करके और श्री वसुदेव गोस्वामी उनका हाथ पकड़ करके उठाकर आलिंगन किए। संबोधन हस्त ग्रहणादिना कम असो उत्थाप्य आलिंगी पानी की गए। वेणु रवम श्रुत्वा, वेणु का वाव शब्द सुनकर गोपियां आपस में वर्णन करती हुई आलिंगन करने लगी। वेणु रवम वर्णयन्ते, जैसा पहले भी कहा गया है कि बांसुरी के विषय में गोपियां बात करने लगी। वेणु गीतम श्रुत्वा वेणु गीतम वर्णयन्त, ऊपर आया था वेणु गीतम श्रुत्वा और इसमें आया है वेणु रवम वर्णयन्त, यही मुख्य है। और जो भगवान के रूप या लीला की चर्चा की जा रही है वो इसके साथ ही लगा हुआ है। श्री कृष्ण के गोस्वामी जी करते हैं पूर्वा में तस्व प्रस्तुतत्व वेणु रवम, वेणु ध्वनि का वर्णन कर रही है प्रश्न, अर्थात वेणु में कौन सी बात गाई जा रही है, कितनी सुंदर है, इसी का वर्णन कर रहे हैं। अथवा वेणु वादन में तत्पर श्रीकृष्ण की भावभंगी कैसी हो रही है, कैसे उनका हस्त संचालन हो रहा है, ओठ कैसे है, कैसे खड़े हैं, प्रभंग लगे, इनका वर्णन कर रहे हैं। वेणु के संबंध से। अतः जत्राशु व्यक्तो नास्ति तत्रा क्यूरिया एव। अतः आगे जहां यह बात स्पष्ट न आए वेणु वादन के विषय में तो वहां भी यहां से समझ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा उदाहरण है जिसमें वास्तविक का वर्णन नहीं किया जाएगा लेकिन वहां समझ लेना चाहिए यही से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तविक के स्वर का वर्णन करने लगे आगे भी करें। जैसे एक श्लोक आया है हंताय मद्र रबला हरिदास वर्ज राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रेम मानव तनो के सर्वो गणेश संयोजक पानी असू व्यवस्था कंदमूल है, उसमें बांसुरी का वर्णन नहीं। श्रीपा सनातन गोस्वामी कहें कि जहां ये जहां ये प्रकट न हो जत्र असत व्यक्त न अस्ति तत्र अति उहिया, यही बात वहां ले चलनी चाहिए। जयराज जी पर खड़े होकर के कृष्ण बांसुरी बजाते हैं या जहां तहां वही मुख्य लीला है, वो वर्णन करते थे बांसुरी वादन ही केंद्र में है कृष्ण, और इस तरह से कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। नहीं तो श्री सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह सकते थे कृष्ण लीला का वर्णन करने लगे, ऐसा नहीं कहते देवु राव का वर्णन करने लगे। वह तो सूक्ष्म बात है, इन भक्तों को इसका स्वागत करते हुए चलना चाहिए देव राव का वर्णन करे। जगह रूप देशादि वर्णन तत्चर्जन पर सत्तर किया, और आगे जो भगवान के रूप गुण लीला आदि का जो वर्णन है वेशभूषा का है तो यह बांसुरी वादन के साथ ही प्रसक्त है, ये समझना चाहिए। जब कृष्ण चेष्टितम इति पूर्वोक्तम आकर्षणीय अथवा वेणु राव के साथ आकर्षित करके लाना पड़ेगा और अपनी ओर वेणु राव और स्मरणते कृष्ण चेष्टि पर कृष्ण के लिए दोनों वर्णन करो तो आकर्षणीय वहां से खींच कर इसको लाना चाहिए यहाँ, क्योंकि अंत में भी कहते हैं वर्णयन तो मिथो गोप्य क्रीड़ा स्तम्भता अंतिम श्लोक में सुखदेव वसन करते वर्णयंत क्रीड़ा किसकी क्रीड़ा भगवत भगवान की क्रीड़ा, किस भगवान की वृंदावन चारी भगवान की क्रीड़ा वृंदावन चारी ना भगवत क्रीड़ा वर्णन यहाँ तो आ रहे कि वेणु रणम वर्णन का और अंत में कह रहे हैं कि वृंदावन बिहारी भगवान की क्रीड़ा का वर्णन कर रहे थे, इसलिए वेणु रण के साथ साथ इसको शुरू से किस तरह हिलाना चाहिए या अंत में जो वर्णन किया गया सुखी चलना चाहिए। इसका अर्थ है वेणु वादन से संयुक्त जो भी लीलाएं हैं वे गाते वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत बात एक बार कहते हैं कि वेणु नादन का वर्णन करने से वेणु दिखता नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए कि स्मरणते कृष्ण चेष्टितम, इन दोनों भेद नहीं है, कोई व्यक्ति स्मरण करेगा भिन्न पदार्थ का वर्णन करेगा भिन्न का हो नहीं सकता। कृष्ण चेष्टितम का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण चेष्टितम ही गाएंगे, बांसुरी वादन भी कृष्ण की एक चेष्टा विशेष ही है, वो कोई अलग से नहीं है। भगवान की क्रीड़ाओं का वर्णन करना है वृंदावन के साथ ये जोड़ लेना चाहिए। अभिनय धीरे का फिर आलिंगित वक्त्य आलिंगन करने लगी, किसका आलिंगन करने लगी यह वर्णन नहीं, भगवान के वेणुवादन का वर्णन करते हुए आलिंगन करने लगी किसका, श्री सुखदेव गोस्वामी कर्म का वर्णन नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ कहता है हृदय प्रांतम श्रीकृष्ण भावनया, हृदय में जो कृष्ण है बिल्कुल भरे हुए हैं हाय भावना से उन्हीं का आलिंगन करना, हृदय में अलग नहीं कर रही है, हृदय में पूरा वृंदावन और गोप सखा और सर्व और वासनी वादन भरा हुआ है, वहां अलिंगन कर रहे हैं। लेकिन हृदय प्रांत हृदय में जो छवि अंकित है उसका अलिंगन कर रहे हैं। तो यही समझना चाहिए कि योगियों जैसा हृदय में अलिंगन कर रहे हैं, भावना से वही पहुंच करके बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण का अलिंगन कर रहे हैं। यह आधार ये कैसे पता चलता है कि आलिंगन कर रहे हैं, उनके बांह की मुद्रा ये बता रही है कि कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं। एक अर्थ है अथवा बांसुरी वादन सुन करके इतना आनंद आ रहा है कि सखियां आपस में एक दूसरे का आलिंगन कर रही है, आनंद से आनंद के उद्रेक से एक दूसरे को बांह में पकड़ने लगी, आलिंगन कर रही है। अथवा वेणु रमम एवं आलिंगन क्या अभिरे अभिरे वेणु रमम इसमें कर्म है, करता है गोपी है, तो वेणु रम का आलिंगन करने लगी अभी कहा जा सकता है। तो इसका अर्थ यह है वेणु नादम एवं प्रीत्या हृदय संलग्नम चक्र प्रत्या, वेणु के स्वर को जब सुने तो मानो उसी को पकड़ करके हृदय में कर रहे हैं, इतना सुंदर शब्द है उस वेणु के शब्द को ही आलिंगन कर रहे हैं। सर्वेशम भूताना मनोहर क्यों तत्ताशा नृत्य यहां एक विशेष बात है जिसे समझना चाहिए, सर्वभूत मनोहर बांसुरी का स्वर समस्त जीवों के मन को हरने वाला था, फिर गोपियों के मन को हरने इसमें क्या करना है, तीनों तथा जो बांसुरी के स्वर से शब्द तत्व से प्रेम तत्व से अनभिज्ञ गौवे जब इतना प्रभावित होती हैं, कीट पतंग पक्षी प्रेम पेड़ पौधे भी जब प्रेम में विकल हो जाते हैं तब श्री गोपियों की क्यों नहीं ऐसी दशा में, तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में मग्न है। इस प्रकार के आपस में वर्णन करने लगे अक्षं वतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशुननु विवेशयत वयस्ये वक्त्रं व्रजे सुतयोरनुवेणुजुष्टम् अक्षर बताएं इति त्रयोदशी 13 श्लोकों में गोपी जनों ने भगवान के वेणुवादन के विषय में कहा है। अक्षर बताएं इति अक्षर बताएं जस पहला शब्द है और इस तरह 13 श्लोकों में अक्षर बताएं चक्षुष बताएं इधर फल यही फल है। नेत्र फल क्या है, नेत्र मिलने का फल क्या है, और यहां अक्षी शब्द दिया गया है, इसमें अक्षी शब्द से सारी इंद्रियां भी समझना चाहिए, आगे चलकर इसकी व्याख्या की जाए। चक्षुष मकान तावत इधर में वह फलम फलम क्या प्रिय दर्शन आंख का फल क्या है, सुंदर वस्तु को देख लेना। तो आंख का फल क्या है सखी, तब इदम एवं इदम पहले इदम लगा इदम का भी भाव का भी व्यक्त किया जाए, क्यों इदम पहले कह रहे हैं, इदम फलम फलम प्रिय दर्शन यही फल है परम अन्य न विदाना अन्य फल हम नहीं जानते, यही फल है आंख मिलने का, और कोई दूसरा फल वलम न विदाना हम नहीं जानते, अपरे जानते दूसरे जानते होंगे कि आंख का फल क्या है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में है सत्यों आंखों का फल यही। क्या फल है आंखों का, ध्यान से सुनते जाइए मूल श्लोक को, अक्षरवतम फल विदम न करो विराम, एक पहली ऐसी बात कही जाती है। आंखवानों के आंखों का फल यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते। न अन्य फल, अन्य फल का अर्थ है न तो प्रिय पुत्रादि दर्शन। कुछ लोग अपने पुत्र का या प्रिय का या प्रिय पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, देखते हैं तो तृप्त होते हैं, सोच आंखों का फल मिल गया। इस संसार में देखने के लिए लोग, देखने के लिए लोग कितना मोलाई थे, एक दूसरे का फोटो रखते हैं साथ साथ, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसी में जिंदगी बीत जाती है। ये आंख का दुरुपयोग है वास्तव में, आंख का फल यही है और दूसरा नहीं है। किम का तो क्या फल है तो बता रहे हैं कि तच्च फलम, वह फल यह है कि सखी सह सखाओं के साथ पशु पशुओं को वनम प्रवेश करे, तो वन में प्रवेश करा करके जब रामकृष्ण घूमते हैं चलते वन में प्रवेश कर एक वन से दूसरे वन में, तो राम कृष्ण वक्रम जय निपीतम सागरम दृष्टम तरच जुष्टम सेवितम नान्य रीत्यर्थ। वृंदावन में प्रवेश करते पशुओं को लेकर के सखाओं के साथ कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं और उस समय उनके वक्त्र को जिन लोगों ने पिया है, निहान किया है अर्थात आदर से स्नेह से देखा है, कई ये वह उन्हीं के द्वारा आंखों का फल सेवित हुआ प्राप्त हुआ है। नीतीत जिन्होंने नितरण पीतम कृष्ण और बलराम के वक्त्र को, वक्त्र का तो मुखमंडल मुख को जिन्होंने पिया है, कैसे पिया है तो अपने आप समझ लेना चाहिए, नेत्रों से पिया है अक्षर लता पहले समझ लेना चाहिए, अथवा निपान क्रिया तो है परंतु करण का प्रयोग यहां नहीं किया गया। पान साधन क्या है, आंख से पिएंगे कि कान से पिएंगे होठों से पिएंगे, करण कई हो सकते हैं, इसमें पहले पानी पीने के लिए तो मान ली कोई कटोरी से पी लेगा, चाहे गिलास में पी लेगा, चौंजन से भी पी सकता है, लेकिन जिन्होंने पिया है कृष्ण के मुख को या बलराम जी के मुख को उन्हें ही नेत्रों का फल मिला है और किसी को नहीं। न कथम भूतम भक्तम तथा अनुरक्त कटाक्ष मक्षम, अनुरक्त जने से जो कृष्ण में अनुरक्त है, कृष्ण में परम आसक्त है, सखा या और भी कोई वनवासी जीव या हम गोपियां उनके प्रति जो तुलसी चित्रण से देखते रहते हैं, तो इस तरह से कृष्ण जब किसी प्रिया पर या किसी सखा पर देख रहे हैं अनुराग से, उस समय उनके मुख को देखना यही नेत्रों का फल है। अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष अथवा जय नीतम तैवर्तन तय जुष्टम इदम एवं अक्षमता अक्षम फल मुक्ति। दूसरा फल नहीं है इसको मिश्रण भागवतम में कहा गया है, बढ़ा इते तो नैने नरान वृंदा ने विष्णु न निरीक्षित हो गए। मनुष्यों के वे दोनों नयन मोर पंख पर बने हुए नेत्र की तरह बेकार है जो भगवान विष्णु के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते। सुध गोस्वामी ने कहा स्वीकार्य डिसीजन कर, जिन लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है या भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया है, चाहे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र बढ़ा लेते मैंने लगाना, उनके नेत्र बढ़ाई थे साफल सुने तो बढ़ता थे मयूर मयूर पंख, तो मोर के पंख पर भी आंख जैसा बना होता है, वो देखती नहीं है केवल आकार भर आखता रहता है। मनुष्यों के वे नेत्र जो कभी भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, ये वैष्णव का दर्शन नहीं करते हैं, वे मोर के पंख पर बने हुए आंख की तरह व्यर्थ है, देखे नहीं वास्तव ब्लाइंड है वे। इस बात को सुनकर के कोई शुद्ध गोस्वामी या सरकारी विषय से झगड़ा कर सकते हैं, क्यों हम उनको ब्लाइंड कर रहे हैं? अरे सीधा अंधा नहीं कहकर के कह रहे कि मोर पंख पर बनी हुई आंख है, बिल्कुल और भी खराब है ना। इस आंख में तो कुछ न कुछ देखने की शक्ति रहती है, इधर उधर चंचलता है, लेकिन वो मोर के पंख पर बनी हुई आंख कह देना एक शिष्ट भाषा में बोल रहे हैं, बरहर के मैंने बिना विष्णु न लिख सकते। तो श्री गोपियां तो कहती हैं, नहीं हम तो ये नहीं कहती हैं कि आंख वाले देखते नहीं, देखते हैं, लेकिन आंख का वास्तविक दृश्य प्रियदर्शन, आंख का वास्तविक फल है कृष्ण बलराम को वृंदावन में प्रवेश करते हुए देखना, खास करके किस मुख को अनुदेन जिसका अनु अनु का अर्थ है अनुकूल भावे में जुस्तम वेणु, जिसमें वेणु लगा है अनुवेणु, ये मुख का विशेषण है, जिस मुख पर वेणु है और जिस मुख में ऐसी चितवन है कि अपने प्रेमियों के प्रति देख रहे हैं, तो उस समय कृष्ण बलराम के मुख को देखना यही मित्रों का फल है सखी, और कोई दूसरा फल नहीं। यह फल आंखों का फल हम लोगों को नहीं मिल पाया है, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। इस प्रकार का फल तो केवल ब्रज के सखाओं को प्राप्त है, ब्रज के सखाओं को ही नहीं वृंदावन के प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ है, केवल हम लोगों को सुलभ है, हम देख नहीं सकते हैं कृष्ण, ऐसा हमारा जन्म हुआ, चारों ओर से प्रतिबंध है। वास्तव में एक अद्भुत बात है, सबसे अधिक प्रेमवती गोपियां हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं देख सकती है, निषेध चारों तरफ से ब्रज में है। इदम इतिहास आदम निर्देशक वक्षमाणस्य परम फल रूप सुगोप्यत्वेन सहसा प्राक प्रकाशन अयोग्यत्व, इसलिए इदम शब्द कहा जा रहा है क्योंकि जो परम फल कहा जाएगा वक्ष मानस से परम फल है सुगोप्य, वो परम फल जो है सुगोप्य है और सहसा प्रारंभ में ही प्रकाशन के अयोग्य यथवा अथवा हृदय आक्रांत तस्मिन प्रेम भरोदय व्यवस्थे न शब्द तस् विशेष निर्देशा सकते, अथवा हृदय में वह परम फल बसा हुआ और हृदय आक्रांत है, इसलिए प्रेम की बाढ़ से विवशता के कारण उसे तत्काल कहने में शक्ति नहीं है, इसलिए इदम फलम पर पहले नहीं कह सकते प्रेम भर परम दूसरा फल नहीं, दूसरे फल से हम क्या तत्पर है, श्री वृंदावनादि परमाश्चर्य दर्शन तस्य च अन्य सहित अन्यदा अन्यथा व दर्शन अक्षण फल न विद्म है, सभी इस ब्रज का दर्शन वृंदावन का दर्शन या और कहीं भी ये सब आंख का फल नहीं है। गोपियों के लिए अर्थ किया जा रहा है, हम लोग के आंखों का फल तो ब्रज का दर्शन है, आखिर को फल ब्रज भूमि को दर्श है, लेकिन गोपियां आपस में कहती हूं सभी हम देख रहे हैं पर्वत नदी सब कुछ, लेकिन ये आंख का फल नहीं। यह फल है यह फल नहीं, ऐसा कह सकते आगे कहते अक्षण फलम वयम न विद्म, वयम शब्द है इसमें परम विदान क्रिया के साथ वयम जुड़ा हुआ है, विदान क्रिया वयम को अपने आप ले रहा है ले रहे वयम न विदान, हम लोग जनास्तु जानन तो ना, हम लोग जानते होंगे कि आपको कल दूसरा दे, हम नहीं जानते। विदारमो सबका है, हम जानते हैं आंखों का फल, हम ये जानते हैं, अन्य नहीं जानते हैं। अथवा आंखों का फल यही है और अन्य हम नहीं जानते हैं, अथवा विदारमो दोनों जगह लगेगा, आंखों का फल यही है हम जानते हैं और अन्य नहीं है हम जानते हैं, अथवा आंखों का फल यह है हम अन्य फल नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं तो इसका यह अर्थ है दूसरे लोग जानते होंगे, दूसरे लोग समझते हुए कि आंख से हम और देखें और देखने अंधी आंखों का फल, हम नहीं मानते। यह जानने का अर्थ है मानना, हम नहीं मानते हैं कि आंखों का दूसरा फल। अतो अस्माकम चक्षु सा फल दे मतलब, हे सखियों हमारी आंखों का सफल सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार का दर्शन हमें नहीं मिला। सदानी पथक दर्शना भावा यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जन केन प्रकार तद्वत पान में चक्षु फल ब्रजानुपस्तु तासन तदर्शन सुषु फलत्य तथा वन विहारे तथा दर्शन सुन तथक। अब श्रीका सनातन शंकर ने यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जन केन प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख का पान चक्षु से गोपियां कर ही लेती, उसको कहा जत्र तत्र जहां था, जैसे कन्वर्ट पर या फूल चयन करने में सूर्य पूजा के बहाने जो जत्र तत्र ज्यादा तदा जब तब जेना केना प्रकार जैसे तैसे आंखों के द्वारा वो कृष्ण के सौंदर्य तो पीती है परंतु ब्रजांतस्तु ब्रज के भीतर गांव में तासन पर दर्शन सुष्ट फलत और ब्रज के अंदर जो आते हैं गाय चरा करके तो कृष्ण का दर्शन ठीक अच्छी तरह से होता ही है, फिर भी तथापि वन विहारे तथा दर्शन सुख के नकते होते, लेकिन वन विहार में कृष्ण के दर्शन की जो लालसा है इस दृष्टि से बात करी जा रही है। वन विहार में से कृष्ण को पूर्ण तरह नहीं देख पाती और देखने में एक और बाधा है कि गुरु श्री बलराम जी साथ में आज तो वहां वे निधर देख नहीं सकते कृष्ण, और ऐसे वन में वो जा भी नहीं सकते हैं, घर के लोग सास से पूछे कहां जा रहे वन में क्या भावना बताया, जो चली भी जाए तो सामने बलराम जी हैं या और दिशा का जो है उसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी जाते थे कृष्ण की रक्षा करने के लिए, जो अनुभवी थे वन में सब चीज देखते थे, यहाँ ये जल है यार ये स्थान है यहाँ ये है वहां बाघ रहता है वहां नहीं जाना है, यानी उसे बचा करके रखते थे। तो वन में जा करके कृष्ण का दर्शन करना यह संभव इनके लिए नहीं, वन विहार के समय से कृष्ण के सौंदर्य का काम नहीं कर पाते, किसी में कहते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, आंख मिली लेकिन आंख मिलने का फल नहीं मिला, और अयमेव ही निर्भर प्रेमरो अतृप्त्यादि विशेष लक्षण स्वभाव, यही है अक्सर प्रेम का स्वभाव, कभी वितृप्ति का अनुभव नहीं होने देता है प्रेम। और हे सख्य, इसमें संबोधन है सख्य संबोधन, हे सखी तो इसका अर्थ है कि हे सख्य की जुष्मा भी प्रभुतरा मुद्दा है स्वर व्यक्ति भाव, तुम सबको मालूम है क्या आसान लेते फल है, अनुदेश है तो दो वचन में है षष्ठी विभक्ति में, कृष्ण और बलराम जब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रवेश करते हैं अनु का पश्चात गायों के पश्चात क्या अनु और पशुन अनु पशुन पशुओं के पीछे पीछे विदो शायद जो प्रवेश कर रहे हैं रोष शब्द असली क्रिया है प्रश्न शब्द लगा होता है, इसलिए विदो शायद प्रवेश शायद पशुओं को एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कराते हुए कृष्ण बलराम के हम दिव्य स्तर पर स्वयं प्रवेश करते हैं नहीं प्रवेश कराते हैं अथवा पशुओं के पीछे पीछे प्रवेश करते हैं। पश्चात जब वह बना बनांतरम विशेषण प्रवेश न संकेत मधु शब्दादिना प्रवेश एक वन से दूसरे वन में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं शाखाओं के साथ भिन्न तरह से गाते हैं संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेश बांसुरी में संकेत गा रहे संकेत का अर्थ होता है एक तो निर्देशन करना और दूसरे संकेत का अर्थ है अपने राग को प्रकट करने गोपनीय के प्रति मधुर शब्द करते हुए बांसुरी से प्रवेश करना ऐसे कृष्ण बलराम के मुख को देखना यही आत्मा की सफल अथवा ब्रजेश सूत यो हो ये सप्तमी विभक्ति में विद्धि वचन वाला सूत्र है। ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो वक्त अनुदेन है जिस पर वेणु है उसको पीना आता कथा ये बात बिल्कुल समाप्त नहीं आ रही। ये प्रसिद्ध बात है कि श्री बलराम जी का श्री भक्त नहीं बजाते हैं कभी कभी बजाते हैं लेकिन एक ऐसा मुख है जो अनु का तो निरंतरम वेणु जुष्ट निरंतर वेणु से जुष्ट है उस दुष्टम को यहां लाएंगे अनु वेणु अपने आप में पूर्व शब्द है लेकिन अनु वेणु दुष्टम का तो निरंतर वेणु से युक्त वक्त को पीना यही लेना चाहता ब्रजेश सूत कृष्ण और बलराम दोनों को नंद बाबा का सुत क्यों कह रहे हैं जबकि ब्रज में प्रसिद्ध बात है कि बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं रोहिणी जी ब्रज में रहते थे तो ब्रजेश सूतलो क्यों कह रहे हैं ब्रजेश पुत्रों के ब्रजेश तो समझ में आ रहा है श्री नंद महाराज ब्रजेश वसुदेव की ख्यात घोषु के स्थिति भूतली क्या श्री हरिवंश से श्री हरिवंशोत्ता में सारण श्री बलदेव से अपेक्षित श्री कृष्ण साहचर्यता पुष्प तत्व पुष्पपुत्र श्री नंद महाराज के द्वारा पाले गए पुत्र थे तो पाला गया बेटा ही बेटा ही होता है इसलिए ब्रजेश सूत कह देना ठीक है तब साहित्य न बलराम साहित्य न श्री कृष्ण से शोभा विशेष मत है। एक तो बात हो सकती है कि श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण और वृंदावन में निर्भय रहते हैं और विशेष शोभा का उदय होता है इसलिए उस दृष्टि से कहते हैं अथवा श्री कृष्ण विषयक निर्भाव विशेषस्य स्वाभाविक स्व लज्जा आच्छादनाय साधारण गौरव इसको मैं कह देता हूं श्री कृष्ण के प्रति अपने विशिष्ट प्रेम को छिपाने के लिए बलराम जी को भी लेकर साधारण रूप से व्यक्त कर जहां भी वर्णन आएगा दोनों का लेकिन कृष्ण के मुख का पान ही समझना चाहिए क्योंकि दो वचन में दोनों भाइयों को कहा गया लेकिन वक्त एक वचन है वक्तव्य चाहना चाहिए वक्तव्य कहना चाहिए था लेकिन वक्त एक वचन है दो का मुख लिप्त होगा नहीं नितरा पीतम इति अनेन वक्तस्य सुधामय चंद्र रूप कत्वम ध्वनि अच्छा पीतम जिन लोगों ने जिन नेत्रों ने कृष्ण के मुख को पिया है उन्हें सफल मिला यही फल है आगे जो पिएंगे यही फल नितरण पीतर निपसर्ग की कर नितरण पीतर जिन्होंने खूब अच्छी तरह से पिया है, इसके द्वारा श्री कृष्ण के मुख को सुधा में चंद्रमा, चंद्रमा से जैसे अमृत का स्राव होता है वैसे श्री कृष्ण के मुख से अमृत चुका है। अमृत क्या है? हास विस्तार करके देखना और सौंदर्य जल, ये बात कही जा रही है कि सुधा में चंद्र रूप का तुम हुई वही प्रसिद्ध। दो क्रिया दी जा रही, एक तो निपीतम जिन्होंने कृष्ण के मुख को पिया है और जिनके द्वारा कृष्ण का मुख जुष्ट हुआ है, जुष्ट का जुक्त सेवित सेवा करने का, जो चामल गुला करके सेवा किए या पोंछ है श्री कृष्ण के मुख को धूलि का अपसारण करके कृष्ण के मुख को पोंछ करके या सेवा करके और इसके बाद इसको जिन्होंने पिया है, ये आपको का फल पिया है, सब अद्भुत बात इसके पीछे बहुत रहस्य है। सुनिए तेसा मोक्ष समता निधि इंद्रिय वता निगम निपानम जोषण चलो फल निपानम और जोषण निपीतम जुष्टम जो क्रिया है, तो आंखों का या इंद्रियों का फल है निपान और जोषण। जोषण शब्द का अर्थ होता है जुस के शब्द जो बना है युक्त होना जुटना, और निपान यही फल है और दूसरा फल न विद्मा हम नहीं जानते। आंख वाले कृष्ण के मुख को देखते हैं जुस्तम, तो यही आंख का फल नहीं है, कृष्ण के मुख को देखना है सखी यही फल नहीं है। इदम एवं परम फलम न, यही सुप्रीम फल नहीं है आंख से देखना, तो फल क्या है? फल है जय अधरामृत पान रूपम फलम पीत, जिन्होंने कृष्ण के अधरामृत को पिया है ये फल है, क्यों देखना फल नहीं, इसमें कई बातें छिपी हुई। अक्षणताम परम फलम इदम न परम निदान, इदम में परम फलम न निदान, यही परम फल नहीं कृष्ण को देखना। परम फल क्या है? जय निपी कर जब अग्रामित पान की संपत्ति से रसनेन्द्रिया सफल जीवन हो जाती है, तो सर्वेन्द्रियाणाम एवं सफल व्यस्त स्वतः सुसते सभी इंद्रियों की सफलता अपने आप है, अतः तदानी अस्माकं कर्म अप्राप्त्या सर्वम एव व्यर्थम इति। तो इस तरह से इनके कहने का आशय है कि जब जिह्वा को कृष्ण का अधिरामित नहीं मिला तो इस तरह से आंख से देखना अपना सब व्यर्थ हो गया, सारी इंद्रियां असफल हो गई इसमें सब। अथवा इसका एक अर्थ यह है वक्रम जुष्टम, जिन्होंने कृष्ण के मुख को देखा है यही आंख वालों के आंख का फल है। वक्रम जुष्टम ज इदम और चक्षुष मतान चक्षु फल, तो अर्थ है वही शब्द इदम तो फल, ये तो फल है लेकिन जस्ट जने रसनेन्द्रिय व नीति कंपेशन फल की वक्तव्य विशेष, जिन्होंने आंख से श्री कृष्ण को देखा है यही है आंख वालों की आंखों की सफलता, फिर जिन्होंने रसनेन्द्रिय के द्वारा कृष्ण के मुख को पिया है उनके विषय में क्या स्मरण मात्र वास्तव रुद्ध कंठ तैयार व्यक्तन वक्तों में कार्य की आप व्याख्या में ऐसी बात कह रहे हैं गोपियां क्यों नहीं कह रही है, तो श्रीकृष्ण तो गोस्वामी कहते हैं कि अधरामृत का स्मरण होने से ही वास्तव से कंठ रुद्ध हो गया, इसलिए व्यक्त कुछ करनी ऐसी बात नहीं है। जगह बलम तो विदारमा एवं न तो अस्माभिक और विदारमा शब्द का अर्थ है कि जैसे कि हम जानती भर केवल हैं कि आंखों का यह फल है लेकिन पी नहीं सकते, जो दीवान जानते अल्प भाग्य को अनुभूत अल्प भाग्य इसीलिए न देखने को मिला कृष्ण का मुख न पीने को मिला अल्प भाग्य। जीव का वास्तविक सुख उसका वास्तविक आनंद है भगवान से मिलने वाला आनंद। प्राकृत लोगों से और प्राकृत वस्तुओं से जीव को जो आनंद मिलता है एक तो आनंद है ही नहीं और दूसरी बात एक तो दुख रूप है और ये स्थायी नहीं कोई संबंध ही नहीं। और जीव में सौंदर्य देखने की स्पर्श की स्वाभाविक वासना ये सारी वासनाएं पूरी हो जाती हैं अपने ओरिजिनल रूप में भगवान कृष्ण को विषय के रूप में पाते यही है वैष्णव दर्शन वास्तव। जीव के भीतर जो उत्कंठा है लालसा है प्रवृत्ति है उसको खंडित नहीं करना है केवल है संसारिक विषय के बदले भगवान कृष्ण को कर देना है। यह भक्ति मार्ग बिल्कुल स्वाभाविक दूसरे मार्गों में जीव की इंद्रियों की प्रवृत्ति का दमन करना होगा। भक्ति पंथ में जिह्वा का दमन नहीं करना है जिह्वा को डायरेक्शन देना इसमें जो रस वासना है उसको भगवान के प्रसाद में ले जाना है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
और पैर में जो चलने की वासना है हाथ से काम करने की वासना है इस पर इसको कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में जाना चाहिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए यही है जीव की स्वरूप स्थिति।
माथे पैर मुकुट देख चंद्रिका चतक देख माथे पैर मुकुट देख चंद्रिका चतक देख माथे पैर मुकुट देख चंद्रिका चतक देख माथे पैर मुकुट देख चंद्रिका Thank you.
Thank you.
पल्लवो आम का पत्ता भगवान श्री कृष्ण और बलराम किस तरह श्रृंगार किए हैं अपना विशेषकर कृष्ण ये बड़ा बता रहे हैं। वृंदावन में आम का नया नया पत्ता बांधे हैं तो इसी पर बांधते हैं या जो पाग लगाए हैं जो पाग बांधे हैं पाग बांधना उनका स्वाभाविक है क्योंकि धाम में गाय चराना होता है सिर पर पगड़ी बांधते हैं बहुत सुंदर और पगड़ी में जहां तहां आम का कोमल कोमल पत्ता खसे चूत पल्लव आम्र पल्लव और प्रवाल प्रवाल का होता है कोमल कोमल पत्ता चूत से प्रवाल हो नव पल्लव प्रवाल का स्तर है नव पल्लव नया पत्ता स्तवतः पुष्प गुच्छ स्तवक का पुष्प का गुच्छ कभी कभी श्री कृष्ण और बलराम अपने सिर पर पुष्प का गुच्छ डालते हैं कई पुष्प एक में हो उसको पुष्प का गुच्छ गुच्छ पुष्प गुच्छ उत्पलम तदंत कोश कमल के आकार जैसा फूल होता है उसको उत्पल कहते हैं उसका अंतःकोष उसको लिए उत्पल का अंतःकोष कहाँ लिए हैं कान में दोनों कानों पर और आम पल्लव पुष्प गुच्छ और वर तथा स्तब पुष्प गुच्छ और वर ये सब शीर्ष में सिर पर तो सिर पर अनुपृक्त शब्द सब जगह लगाना पड़ेगा सिर पर लगाए हैं आम्र पल्लव मयूर पंख स्तव और उत्पल दोनों कानों पर और अब्ज दाहिने हाथ में घुमा रहे सो नीला कमल पर इसकी आवश्यकता पड़ती है कृष्ण को क्योंकि उनका मुख इतना सुगंधित और सुंदर है कि उसी को कमल समझ कर घोड़े में रहते रहते हैं इसलिए कृष्ण हमेशा कमल लिए रहते हैं इसको हटाते हैं नीला कमल पहनते हैं सर्वदा वृंदावन में कमल लिए चलते हैं और ऐसे भी भगवान विष्णु के स्वरूप में उनको कमल लेने की आदत है एक हाथ में चार बाहों में एक बाह में कमल लिए और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी कमल लिए रहते दोनों का एक ही सौदा लक्ष्मी जी हमेशा कमल लिए रहते हैं कमल के वन में रहते हैं इसलिए उनको पद्मा कहते हैं पद्मा कहते पद्म वाली और ये पद्मधर है वृंदावन लीला में भी भगवान अब जो लीला कमल दक्षिण करे एकानी च ये सब चूत प्रवाल बरहस तबकोत पलाज यहाँ तक ये सब धारण इसके बाद माला और अनुपृक्त परिधानानी च माला धारण किए हैं और वस्त्र धारण किए तो वस्त्र को अनुपृक्त शब्द दिया गया है बहुत ध्यान देने की बात है और कंगन फूल खोस देना, वस्त्र को मोड़ देना, काशनी काश लेना, वस्त्र को ऊपर के दुपट्टा को भिन्न ढंग से रखने स्वामी पृष्ठ पर सजाए हुए बांधे हुए, माला भी ठीक ढंग से पहने हैं। माला भी बहुत बड़ी लटकी नहीं है, माला बहुत कमी से बाहर हुई है, नाचना है ना, माला झूलती रहेगी वो ठीक नहीं लगता। अनुप्रिक्त परिधाना, परिधान जिसको पहना जाए, धारण किया जाए, पल पर चारों तरफ शरीर में धारण किया जाए तो उसको परिधान परिधान यानी तय। इन सब चीजों से अथवा चुनकर प्रवाह स्तर को प्रलब्ज मालानुप्रिक्त परिधान से विचित्र वेश, विचित्र वेश चित्र या विचित्र दोनों का एक ही अर्थ होता है संस्कृत में। विचित्र का अर्थ होता है पहले से भिन्न शोभा। अब एक जगह मान लीजिए किसी का चित्र बनाया गया और उससे फिर दूसरा चित्र बनाया गया तो उसको विचित्र होता है, विशेष चित्र। या चित्र भी अपने आप में आश्चर्य का बोध रहता है, अद्भुत अद्भुत वेश। भगवान श्री कृष्ण का और श्री बलराम जी का यह वृंदावन अपना खास निवास स्थान है और यहाँ कोई चिंता नहीं, किसी का दबाव नहीं। वृंदावन की यह स्वच्छंद लीला है, पूर्ण सुख लीला। जो भी देश बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं तो अभी गोप का देश भगवान बनाया है, लेकिन छद्म लीला में कभी लीलहार बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। ये भगवान का अपना घर है और इसमें कोई चरित्र नहीं, ये सब वेश धारण कर लेती है कृष्ण भगवान तो। इसको भी चित्र वेश कहते हैं या चित्र वेश। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार से सजाते थे वेशभूषा और इस तरह सज करके इन सब से दोनों भाई विचित्र वेश और कृष्ण बलराम और पशुपाला नाम गोष्ठिया मंडल्य तत्रापि मध्य चलते थे तब तक कहीं सुखद वृक्ष की छाया में अथवा सूर्य का जहां घाम बहुत नहीं लगता था समशीतोष्ण था वहां एकाएक बैठते थे सब गुरा। कृष्ण बलराम दोनों ग्वालों के बीच में पशुपाल गोष्ठी, पशुपाल गोष्ठी में और तत्रापि तेषां मध्य गोष्ठी के बीच में अलम दिरे जतु बहुत सुंदर लगते। अलम का अर्थ होता है प्रजा, बहुत अधिक सुंदर लगते। कैसे लगते थे? नट वरल श्रेष्ठ नर्तक राज की तरह नाचने के लिए दोनों प्रस्तुत होते और गोप सखा ये सब बजाते थे बाजा और पीछे से कोई कोई गाते थे, गाते थे और बजाते थे गोप सखा। और कृष्ण बलराम दोनों भाव बताते थे नाचना से और कुछ अब गाय मानो प्रदन गाते थे सुन। गोपों के बीच में कृष्ण बलराम नाच रहे हैं और पृथक पृथक तरह से गोप जय हो वाह वाह उत्तम नृत्य उत्तम नृत्य हुआ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बाजा बजा रहे, बाजा कहां से लाए हैं? घर से ढोलक मृदंग लाने लेकर नहीं आए। कोई बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी लिए है, कोई सिंह बजा रहा है, कोई कप्ते कप्ते तिहरी बजा करके बजा रहा है। पत्ता से खास करके ताल के पत्ता से बाजा लड़के बजा लेते बना लेते हैं आज भी बहुत सुरीली आवाज होती है। वही सब लिए और बजा रहे, खूब नृत्य हो रहा है। बीच बीच में कोई कोई लड़का खड़ा होकर के साथ में हो रहा है। यह जो सुख है पशुपाल गोष्ठी नाचने का गाने का जो दृश्य है, हे सखी हम लोगों को यह दुर्भाग्य। वास्तविक धन्य तो इस संसार में गोप बालक जिनके बीच में कृष्ण भगवान नाचते हैं और बल्कि वही सहायक हैं, गोप बालक ही सहायक हैं उनके बीच में बजा बजा। देखते रहते हैं। इसलिए धर्म सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं पशुपाल पशुपाला नाम गोष्ठ है, किनके बीच में भगवान बैठे हैं? पशुपालों के, कसाईयों के बीच में भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं, पशु का पालन करते हैं उनके बीच में भगवान बैठे हैं। गोप गोपाल कलमन करने वाले, आज भी देखा जाता है कि पशु का पालन करने वालों के नाम में टाइटल पाल शब्द जुड़ा है। पाल पाल का भी होता है पालन करने वाले, पशुओं का पालन और लोग पशुओं का दूध भी सब खाने वाले, गोप जो है वो पालन करते हैं पशुओं को। बहुत कठिनाई होती है पशुओं के पालन में, पहाड़ में जंगल में खोह में कंदरा में सब चराना पड़ता है, धाम में और लोग केवल बस दूध और क्या सब्जी बनाते हैं पनीर, खाने में तेज है पशुपालन में नहीं। तो सबसे पवित्र और उत्कृष्ट कोटि के जीव मनुष्यों में भगवान के बीच में पशुपाल शब्द बता रहा है गोपों की पवित्रता को, उनकी निष्पापता, पशुओं के पालन करने वाले की गोष्ठी में कृष्ण भगवान देना। यह सुख तो देवता लोग भी नहीं लेता, देवताओं के बीच में भगवान बैठते हुए तो सिंहासन पर पूछते हुए ब्रह्मा जी ठीक से सृष्टि हो रही है, शिव जी ठीक से आप काम कर रहे हैं, इंद्र से पूछते हुए ठीक से सब हो रहा है, लेकिन किसके बीच में नाचते हैं? गोपों के बीच में। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
यह छवि तो वृंदावन की है, वास्तव में भगवान है, नाचते हैं गाते हैं। तथा की मध्य पशुपालों की गोष्ठी में उनके बीच में जब अपने मित्रों के साथ अनुकूल भाव से कोई गोष्ठी की जाती है, जैसे इष्ट मित्र कहते हैं, इष्टों की जब मीटिंग होती है तो इसको इष्ट गोष्ठी कहते हैं। आजकल इष्ट गोष्ठी होते हैं तो सब अनिष्ट गोष्ठी जैसे लगते हैं, एक दूसरे का आक्षेप करना, उसकी कमी बताना, अनिष्ट गोष्ठी होती है। इष्ट गोष्ठी का अर्थ है अनुकूल भाव से एक दूसरे की सहायता करने के लिए गोष्ठी, इष्ट गोष्ठी या पशुपाल गोष्ठी। तथापि मध्य अतः विशेषण तेसु पृथक पृथक पक्त शोभा प्रकटने और गोपों के साथ सबके साथ भिन्न भिन्न भाव से नाच रहे हैं, भिन्न भिन्न शोभा प्रकाशित कर रहे हैं। कभी कभी कौन को सीधा करता है तो पूछा दोनों भाई को नृत्य के आवेश में, तो बच्चे संभालते क्यों विविधम ले दो तुष शोभा, विविध प्रकार से शोभा दे रहे, विविधम ले जो उतार कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का शरीर चिन्ह है, अतः कब किस रंग का किस प्रकार से युक्त हो जाए कोई ठीक नहीं आता, विविध रेज। अब देखें स्टेज पर कई प्रकार के लाल का आजकल लोग लगाते हैं, कभी इनका एक ग्रीन दिखने लगता है सबसे, कभी पीला, कभी वाइट, कभी नीला, इस तरह के दृश्य बनाते रहते। तो श्री कृष्ण बलराम विविधम रेज विविध प्रकार से प्रकाशित हो रहे, जथा नतवरो गंगम विराजित इत्यादि दृष्टांते न त्रैमृत्यादिकम स्वच्छंगम सिखादिकम च। ये दृष्टांत दे रहे हैं जथा नतवरो, जैसे नाचने वाले नट विशेष नट नाच रहे हैं, तो नतवरो दृष्टांत देने का ये भाव है कि इनके नृत्यादिक के नृत्य कुशलता को और स्वच्छंद को और सुख को व्यक्त करें। सुख से नाच रहे हैं का सुख व्यक्त हो जाए और गोपा नामक एकादश वेश वैदर्धन कर वाद्यादि परोत्तम चौधन जाते और गोपों का भी उन्हीं जैसा भेद समझ लेना चाहिए। और जो पशुपाल बैठे हैं सब इसी प्रकार के वेशभूषा इसी प्रकार के वाद्य नृत्य वैदक भी अगर से उपयुक्त है अन्यथा नृत्यादि शोभा असंपत्त है। तो बच्चे भी सब इन्हीं की तरह विदग्ध हैं और वो भी इसी भेष में है बाजा बजा रहे हैं भाव के अनुसार नृत्य काल आदि के अनुसार जय हो जय हो। खुद उसमें बीच में कभी कभी सब उठकर नाचने लगते हैं कभी गोचार नाचते हैं कभी कृष्ण बलराम को बैठाते हैं तुम लोग बैठो और ये बाजा बजाना चालू कर कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं राम जी की बांसुरी बजाते हैं कुछ गोप नाचने लगते हैं यही दिन भर चलता रहता है क्योंकि उसमें थकावट नहीं है वो तो प्रेम है दिव्य आनंद है। क्वचक क्वचक का तो कभी कभी पशुपालों की गोष्ठी में नाचने लगते हैं गौरव क्वचक का तो कदाचित इसलिए सिद्ध हुआ कि क्रीड़ा गोस्से में सदा मध्य अवस्था है क्रीड़ा के आवेश में कृष्ण रहते हैं इसलिए सब समय बीच में ही नहीं रहते हैं आशय क्वचक कभी कभी बीच में होते हैं पुस्तकालों की गोष्ठी में नहीं तो कभी कभी बाहर भी कभी बाहर उधर कभी इसलिए क्वचक शब्द का प्रयोग करें। अलम इति अलम दीर्घ तो बहुत अधिक शोभा दे रहे हैं अलम शब्द देने का भाव यह है कि ब्रज मध्य तो विविध संकोचे में तादृश गाना त्यौहार विराजमानता असंपत्त है वन में अलम दिले जाते हैं लेकिन ब्रज में विविध संकोच रहते हैं नाचते हैं लेकिन ऐसे नहीं खोलकर नाच सकते। नंद बाबा हैं उपनंद हैं यशोदा जी हैं और भी कुछ कार्य है तो इतना खोल करके गली में घर में नृत्य नहीं इसलिए इतना सुंदर ब्रज में नहीं रखते हैं जितना वन में रखते हैं। अलम शब्द तुलनात्मक बता रहे हैं अलम इति ब्रज मध्य को विविध संकोचे न तादृश गानादि अभाव इस प्रकार के गान आदि का अभाव है इसीलिए इस प्रकार की विराजमानता का अभाव है। इस प्रकार से सुंदर गाय मानव दोनों का विशेषण गाय मानव कृष्ण बलराम गाय मानव का अर्थ गालंतर कभी कभी दोनों भाई अलाप लेकर के गाने लगते हैं और इधर एक स्वर में थोड़ा अंतर अंतर नहीं लगता दोनों के गला में कभी भेद नहीं लगता कभी गाय मारे और कभी कभी एक भाई गाते हैं फिर दूसरा वो रुक जाते हैं तो दूसरे अलाप लेते हैं और उनका बाजा बच्चों का इनके गान को प्रधान रूप में रख करके होता है फॉलो करते हैं अलाप लेते हैं गाय मारे अथवा गायो न गाने न मान पूजा जलोत्तम अथवा गान के कारण जिनका मान हो रहा है अर्थात जब ये गीत गाते हैं तो बच्चे जागो नहीं हो बाबा ऐसा तो कोई गंधर्व राज भी नहीं गा सकता नारद विश्वास से चित्रवत सब फेल है तुम्हारे आगे कोई ऐसा गा नहीं सकता है धन्य है धन्य में इस तरह से प्रशंसा करते हैं तो गाय मानव का अर्थ कि गाय के कारण गान के कारण जिनको मान मिल रहा है पूजा मिल रही सर्वतो विशिष्ट मान सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है प्रशंसा की जा रही बच्चों के जो क्वचित भो सत्य जीवन यह स्थित्व विधात्रा दत्ता चक्षुरा इंद्रियाणी केवल विफली दृश्य तभी तो वनम भूतम में गत्वा किमत अद्भुतम वस्तु वर्षमाध्यम हो दोषी के वस्तु हरी सखी हम लोग तो घर में बैठ करके अपना जीवन व्यर्थ बना रहे हैं जीवन का वास्तविक साफल्य तो गोप बच्चे ले रहे हैं कृष्ण बलराम के साथ इस पर नाचते हैं नृत्य नृत्याद्यावेश तथा गाय गाना करना कभी कभी नृत्य आदि के आवेश में श्री कृष्ण गाते नहीं है, केवल नाचते रहते हैं कृष्ण भगवान। तो इसीलिए क्वच गाय मानव, गाय मानव के साथ क्वच शब्द लगे, कभी कभी गाते नृत्यादि आवेश में तदा गान अकारणा गान नहीं करते। जब वह कदाचित गाय मानव मान आवाभ्यम समझ जुश्वासी को गाय को अस्थि अत्रागत हम गाय थे इत्यादि प्रकार गर्व देते, या गीत गाने के कारण दोनों को बहुत बड़ा गर्व होता है गाय मान, और गाते हुए आलाप लेते हुए कृष्ण कभी कभी कहते हैं बच्चों से या आयुष संसार में किसी से ही, कोई है माई का लाल तो हमारे जैसे गा करके दिखा ऐसे बोलते थे गाय मान, गान के कारण मान होता है गर्व हो रहा है। कौन ऐसा नाल कल्ला लाए गाय नमस्कार गाने में नारद जी अभी बहुत सोचते हैं, लेकिन भगवान के सामने रखा गया सकल कला गुरु नगर पर भगवान समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को पढ़ाया है, ब्रह्मा जी फिर अपने पुत्रों को पढ़ाया, सब इस प्रकार परंपरा से गान कला है। कभी कभी गान के आवेश में भगवान कृष्ण और बलराम इस तरह घूमते कौन है गान जुस्मास अथवा बच्चों से ही कहते जुस्मास को गाय को अस्थि अत्र आगत हंत गाय को आकर के गाओ कौन गाता है इत्यादि प्रकार गर्व जलुष कौ आयुचे क्रीड़ा माधुरी विशेष है। यह इस प्रकार का गर्व होना मान होना कृष्ण की लीला में एक क्रीड़ा माधुरी विशेष है, वास्तव में इसमें दोष है। अतो गोपा एवं धन्य वयम तुम नितराम अधर्म, वो क्या कह रहे हैं कि गोप ही धन्य है हम तो अतिशय अधन्य है। तीन प्रकार कयो रस्वन मध्य प्रलोक भयादिना स्वच्छंद वस्थानाद्यसी, कभी भी कृष्ण हम लोगों के साथ इस तरह निर्भय नहीं रह सकते हैं, हम उनके पास नहीं खड़ा हो सकते हैं फिर नाचने गाने का कोई प्रश्न ही नहीं। एवं अगले अपनी वाक्य से सूझिया तब हेतु लिखित आगे भी प्राय इसी प्रकार के वाक्य आएगी कि हम अधन्य है धन्य ये है, जो जो प्रसंग आएगा उसमें यही बात बोली होगी। वृंदावन में कृष्ण भगवान इस तरह विहार करते हैं इसलिए वृंदावन के लीला गाए जाए।
ब्रज वृंदावन धाम लगे मै जगते प्यार है,
मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मै जगते प्यार है,
मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे जगते प्यार
है,
क्या भिन्न है प्रज्ञा जग मोहे पूजे शीश नवारे, जग मोहे पूजे शीश नवारे,
जग मोहे पूजे शीश नवारे,
या गोपी नित नाच नचावे,
या गोपी नित नाच नचावे,
या गोपी नित नाच नचावे, जो गिनते दुर्लभ गति पावे,
जो गिनते दुर्लभ गति पावे,
यहाँ जसोदा माज पे स्वयं बधाऊ हाथ, यहाँ तो माँ जसोदा मेरा हाथ बांधती है,
यहाँ जसोदा माय पे स्वयं बंधाऊ हाथ, वहाँ जग को पालनिया चोरी करी दिखा चक्र सुधर सन त्यागी से ब्रज को तो जग मांगे धन लक्ष्मी ब्रज दे प्रेम यमो या ते ब्रज और जग ही वास्तविक प्रेम करते हैं कृष्ण से, इसीलिए ब्रज में और जगत भगत में बहुत भारी अंतर है। या ते ब्रज और जगत करते हैं सब करते हैं तो भगवान से वर मांगना चाहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ब्रज में बेटियां व्रत करती हैं तो हमको ही पति के रूप में मांगती हैं, हमसे नहीं मांगती है। व्रत करी गोपी जमुना न्यारे रवि गिरिजा को नीत मनावे कृष्णपति यह बर पावे
कृष्णपति यह बर पावे।
थोड़ा छोड़ना चाहिए, बेचारे नाच नहीं पाते हैं तो हमारी झूठ कर
सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता, सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता, ताई को मांगे जगत भक्ति भई बलिहा। तो जो लक्ष्मी जी हैं उनका मैं पति हूँ और संसार हमारी ही पत्नी को मानता है, लक्ष्मी को मानता है। देखिए सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता, ताई को मांगे जगत भक्ति भई बलिहार। बलिहार का अर्थ भक्ति को तो बलि पर चढ़ाती है, लक्ष्मी मानता है भक्ति में। लेकिन यहाँ क्या है कि ब्रज के लोग साहूकार हैं और ये जगत भिखारी है। जगत के सब लोग मांगते हैं और ब्रज देता है कृष्ण को, इसलिए ब्रजजन साहूकार भिखारी जगत बेचारे। ब्रजजन साहूकार व्यंजन विविध प्रकार की सब्जियां मुझे अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही बिना प्रेम के मुझे अर्पण करता हूँ। इनके व्यंजन मोयन भावे,
इनके व्यंजन मोयन भावे,
इनके व्यंजन मोयन भावे,
इनके व्यंजन मोयन भावे,
नारी बेच के हलुआ खावे, यहाँ के तीन को भोग लगावे,
तीन को भोग लगावे।
और यहाँ
का तो कहना ही नहीं ब्रज का, यहाँ तो केकी का भोग न खाता।
बेझर की रोटी में प्रेम भरी फटकार,
बेझर कहते कई प्रकार के अन्न, जैसे बाजरा ज्वार गेहूं चना, एक तो बेझर की रोटी मिलती है और भी फटकार, लेकिन प्रेम से खाओ यही।
बेझर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार, देह धरे को फल मिलो सुफल भयो अवतार।
मेरा अवतार लेना सफल हो गया कि यहाँ बेझर की रोटी मिलती है ऊपर से गाली मिलती है, मेरा अवतार सफल हो गया।
साल तू साला खाई साल